और अभी वंडरफुल सेशन है हमारे बीच में, बहुत ही अनन्य बाबा के अनन्य बच्चे आदरणीय महेश भाई जी। महेश भाई जी ऐसे गुप्त रतन हैं, यू नो, जिन्होंने जगदीश भाई जी के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। इतना जो यज्ञ का लिटरेचर है, भाई साहब तो मूल सूत्रधार थे, लेकिन सारी कंपोजिशन उस समय पे, सारा टाइपिंग कंपोजिशन, यू नो, सारे ज्ञान खजानों को रूप देना, महेश भाई विशेष रूप से भाई साहब के साथ सेवा दिए हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम भाई साहब के साथ चिट चैट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। तो मैं आदरणीय महेश भाई जी से निवेदन करता हूँ। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है बाबा गणेश किसको बोलता था? कोई बताएगा बाबा गणेश किसको? जगदीश भाई जी को। और जगदीश भाई को कितने लोगों ने देखा है? बहुत। जगदीश भाई यज्ञ के वो अमूल्य रतन है। आज जो बाबा के जितने भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, भाई साहब ने सारा लिटरेचर, यू नो, परमात्मा शिव का जो ज्ञान है उसको बुक का स्वरूप भाई साहब ने दिया। भाई साहब ने 250 से लेकर 300 तक इतनी सारी किताब लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी। और भाई साहब के अंग संग, यू नो, साथ में रहने वाले, उन किताबों को कंपोजिशन करने वाले महेश भाई जी आज हमारे साथ में। भाई साहब आपका बहुत बहुत, यू नो, भट्टी का बहुत अच्छा स्वरूप है कि हमें ऐसे रत्नों से मिलने का सौभाग्य मिलता है जो कभी स्टेज पे नहीं आते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान के खजाने अंदर में भरे पड़े हैं। क्योंकि मधुबन में ऐसे ऐसे रत्न हैं क्योंकि महारथियों से मिले हुए होते हैं, ज्ञान बड़े लोगों को देखा है, दादी दीदियों को देखा हुआ है। और ऐसे जब महारथी हमारे बीच में आते हैं तो सच में बहुत अनुभवों की खाने हमें भी मिलती हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो महेश भाई जी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप भाई साहब से कैसे मिले, कैसे परिचय हुआ, उनके साथ ये सेवा करने का मौका आपको कैसे मिला?
ये 1987 की बात है, जब मैं मधुबन आया था सेवा करने के लिए। तो मुझे शुरू से, पहले भी मैं सेंटर पर रहता था, वहाँ लिटरेचर का सेवा ही मुझे मिली थी। बाबा ने मुझे जन्म से साहित्य विभाग की सेवा दिया था। 1975 से लेकर 1987 तक मैं सब जोन में रहा, वहाँ का लोकल मैगजीन और लिटरेचर प्रिंट करवाना।
कहाँ पे सब जोन?
जाना कर्नाटक के हुबली, आपने नाम सुना होगा, वहाँ से मुझे ज्ञान मिला। जब मैं कर्नाटक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब बाबा का परिचय हुआ, तब से बाबा के बने। और मेरे बनने के बाद मेरा पूरा परिवार, माँ बाप भाई बहने सब ज्ञान में आ गए। और सबसे पहले मेरी छोटी बहन ज्ञान में आई, वो आके हमें सबको, मुझे ज्ञान दिया, फिर मेरे से पूरा परिवार ज्ञान दिया। दो बहने हैं, भांजी वगैरह सारे समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। अभी मैं मधुबन में सेवा कर रहा हूँ। और जब मैं मधुबन में 1987 में आया था सेवा करने के लिए, तब मुझे दादी जी से कहा, दादी मुझे मधुबन में रहना है, क्योंकि 10-11 साल तो मैंने सेंटर पर सेवा किया। तो दादी सोच रहे थे, उतने में मृत्युंजय भाई आए, एक बोला, दादी ये तो प्रिंटिंग का नॉलेज जानता है, लिटरेचर का सारा करता है। तो फिर दादी ने फट से कहा, ठीक है तो फिर इसको दिल्ली भेज दो। तो मैंने कहा, दादी जी मैं तो मधुबन में रहने आया हूँ, दिल्ली मुझे नहीं जाना है। तो दादी जी ने कहा, देखो दिल्ली कृष्णानगर में आत्म प्रकाश भाई अकेला है, इतना बड़ा कारोबार है साहित्य का, अकाउंट्स है, लिटरेचर है, प्रिंटिंग है, पैकिंग है, सारा है, तो आपको अनुभव है, एक साल के लिए चले जाना। तो मैंने कहा, तो दादी जी एक साल कितनी बड़ी बात है, एक साल निकालना बहुत आसान है। तो तो मैं चला गया, हाँ बोल दिया। फिर वो मेरे सामने चार पांच मधुबन के भाई खड़े हुए थे, तो दादी ने कहा ना एक साल के लिए जाओ, तो मैं हाँ बोला, तो वो लोग आपस में हंसने शुरू किया, बकरा फंस गया। तो हमें क्या पता, कुछ तो याद, क्योंकि बड़े ऐसे युक्ति से निकालते हैं ना। तो मुझे भेजा, तो वहाँ दिल्ली गए 87 में, कृष्णा नगर गए। कृष्णा नगर में आपको पता है ना, पहले वहाँ पब्लिशिंग डिपार्टमेंट वहीं था, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, तो वहाँ मैं सेवा शुरू किया। लेकिन जब 87 वहाँ जाने के बाद, जगदीश भाई सब रहते थे शक्ति नगर में, तो वहाँ से वहाँ लगभग दो बस चेंज करनी पड़ती थी, एक घंटा लगता 45, एक घंटा लगता था जाने में या पहुँचने में। तो जगदीश भाई साहब हर महीने दो आर्टिकल लिखते थे ना, एडिटोरियल, ज्ञानामृत के लिए संपादकीय और वर्ल्ड नोवेल के लिए एडिटोरियल। वो लिखा हुआ कागज लेने के लिए जाना पड़ता था और लाकर फिर उसको टाइपिंग वगैरह होने के बाद करेक्शन के लिए देना पड़ता था। इस प्रकार मुझे हफ्ते में एक दो बार शक्तिनगर जाने का सेवा मिली थी, जाना, ले आना, पहुंचाना। तो एक साल तक मैं ऐसे जाता रहा, ले आता रहा, जाता रहा, ले आता। लेकिन उनको, वो खड़े होकर फर्स्ट मंजिल में खड़े होकर मेरे को देखा करते थे, क्योंकि उनमें परखने की शक्ति बहुत है। वही खास कुमार उनको ज्यादा परखते थे, इसका चलन कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो जब मैं आता था तो मुझे तो शुरू से अभ्यास है, 10 साल तुम सेंटर में रहे हुए हैं, तो आना जाना, भाई को बताना भाई मैं आया हूं, तो भाई सब तब तक एक लिफाफे में आर्टिकल भेजते थे, लेके सीधा चले आना। तो पहली बार जब मैं गया था तब उन्होंने किसी सेवादार से भेज दिया, तो जाके मैं पहुंच गया सेंटर पर। उसके बाद आधे घंटे के बाद उनका फोन आया, आतम भाई को फोन किया, वो जो भाई को आपने भेजा था वो पहुंचा? तो उन्होंने कहा हाँ पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद वो फोन करना चाहिए ना, मैं ठीक ठाक पहुंचा हूं। बड़ों का संकल्प कितना चलता है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बताओ, बुला उस भाई को। तो उन्होंने फोन पे बताया, देखो भाई जब आप आते हो तो आने से पहले फोन करना चाहिए, मैं आ रहा हूं। जब पहुंच जाते हो तो पहुंचने के बाद फोन करना, मैं ठीक ठाक पहुंच गया। क्योंकि बड़ों का संकल्प चलाना भी क्या क्या है, हमारे प्रति बड़ों से या बड़े हमारे प्रति अगर संकल्प करे, ये भी क्या है, ये भी सूक्ष्म पाप है। तो ये मुझे बहुत गहरा असर पड़ा। हाँ देखो, हमारे प्रति बड़ों का कितना ख्याल है। उस समय से हर महीने आना जाना, उनसे मिलना, ये उनसे परिचय शुरू हो गया 1987 से।
जब भाई साहब आपने फोन की बात की ना, तो मेरे को भाई साहब की याद आ गई। जब मैं मधुबन में आया तो उस समय पे टेलीफोन एक्सचेंज पांडवन में सेवा करता था, और उस समय पे ये एसटीडी का बहुत प्रचलन था। मधुबन में विदेशी भी आते थे, तो आपको पता होगा कि उस समय पे हाफ रेट, क्वार्टर रेट, ये सारा चलता था। अमृत वेले के बाद हाफ क्वार्टर रेट रहता था 6 बजे तक। तो और उस समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था, सब लोग पीबीएक्स से फोन करते थे, बड़ी दादी, दादियां, सारे बड़े भाई। तो एक दिन ऐसे ही जगदीश भाई जी ने फोन किया योग के बाद 4:45, और उस समय मेरी उम्र 16 साल थी, बहुत छोटा था मैं। और भाई साहब ने फोन करके बोला कि मैं उनकी, ये जैसे ट्रेडिशन होता था, पहले वो अपना नाम बोलते थे, मैं जगदीश बोल रहा हूँ, और क्या आप कृपया मेरे को दिल्ली शक्ति नगर फोन लगा के दे सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने मेरे को संबोधन किया। और भाई साहब का नाम सुनना, मतलब उनकी इमेज ही इतनी बड़ी थी कि अगर कोई इतना बड़ा व्यक्ति इतने सम्मान से बोले तो हमारे तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, और मैं तो था भी छोटा। तो मेरे को लिटरली मैं क्या बोलूं भाई साहब, मेरे को पता ही नहीं था। मैंने बोला भाई साहब मैं यहाँ पे सेवाधारी हूँ, प्लीज आप मेरे को ये बोलिए कि फोन कहाँ लगाना है, मैं वहां लगा दूंगा। लेकिन भाई साहब ने उसके बाद जो मेरे को शिक्षा दी, भाई साहब ने बोला कि नहीं मेरे भाई आप अभी छोटे हो और बाबा ने आपको इतने इम्पोर्टेंट स्थान पे बिठाया है, आपको हरेक को सम्मान के साथ बोलना है, बड़े प्यार से बोलना है। ये बात इतनी पुरानी हो गई लेकिन ये बात आज भी मेरे को याद रहती है। जब भाई साहब ने फोन की बात की कि कैसे कम्युनिकेशन की बात, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, तो सच में मतलब उनसे बात करने का मौका तो भाई साहब तो ऐसे नहीं थे, जब कोई सेवा का मौका होता था तभी उनसे बात हो पाती थी, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि अगर एक बार भी आप उनसे मिलो तो वो कुछ न कुछ आपको शिक्षा दे देंगे, यू नो। तो सच में भाई साहब, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई साहब बाबा उन्हें संजय या गणेश क्यों बोलते हैं, यू नो इसका सीक्रेट क्या है?
बाबा ने उनको चार टाइटल दिए, सबसे पहले संजय, गणेश, व्यास मुनि और दधीचि ऋषि। अगर आप किसी ने अगर पुराण पढ़ा हो या भक्ति मार्ग में कुछ ग्रंथ वगैरह पढ़ा हो तो उनको ये चारों कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। मैं सबसे पहले संजय का पाठ लेता हूं, बाबा ने उनको संजय क्यों बोला? आप जानते हैं ना संजय का कैरेक्टर किस में आता है? महाभारत में। वो भी खास कब है?
जब युद्ध चल रहा है,
कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होता है। उसको क्या मिला था? दिव्य दृष्टि मिली थी। दिव्य दृष्टि भी मिली थी, दूर दृष्टि भी मिली थी। वैसे ही जगदीश भाई साहब को स्थूल और सूक्ष्म दोनों दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। ये क्या होता है? स्थूल क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है? स्थूल दृष्टि से उन्होंने क्या किया, अपने साहित्य द्वारा सारी दुनिया को हिंदी और इंग्लिश में ज्ञान का नेत्र देकर सारा स्पष्ट किया। धृतराष्ट्र वो महाराजा था ना, अंध नए नहीं, ऐसे महामहापंडित महामहा विद्यावान जो दुनिया में है उनको उन्होंने साहित्य लिख कर उनकी आंखें खोली। एक बार एक भाई शक्तिनगर का अपना अनुभव सुना रहा था, वो एक आईएएस ऑफिसर उनसे मिलने गए थे राखी बांधने के लिए, तो उन्होंने बोल के रखा हुआ था अपने लोगों को ये ब्रह्मा कुमारियों को अंदर नहीं भेजना। तो जब वो जो ले गया था ना वो भाई, वो ऑफिसर था, उसने सीधा बहनों को ले जाके उनसे मिला, भाई साहब हमें कोई आपका कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हम भगवान का संदेश देने आए हैं, ऐसे कह के राखी बंधवा के टोली देके उनको एक किताब दिया, इटनल वर्ल्ड ड्रामा, आपने किसी ने देखा हुआ इंग्लिश में, और हिंदी में अविनाशी विश्व नाटक नाम से वो किताब है। तो दिया, जब उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद जब वो रिटायर हुआ तब ये जो भाई है ना अपना पैदल जा रहा था, तब वो आया था, गाड़ी रोक के उसको कहा, भाई जिस आपने जो किताब दिया ना वो मैंने पढ़ी, मेरे जिंदगी में पहली किताब है, इतना सारा नॉलेज उसमें है, इसलिए उस व्यक्ति लिखने वाला कैसे होगा, उसके सारे किताब मुझे ला के दो। उसने उसको पैसे भी दिया और मंगवाया। वो आईएएस अफसर था। इस तरह उनके जो लेखनी द्वारा उन्होंने महामहा पंडितों का आंख खोला, ये है दृष्टि देना संजय के। और सूक्ष्म उनके व्यक्तिगत दृष्टि क्या थी, अगर आप लोग कोई भी उनके सामने बैठे एक मिनट में दृष्टि दे देते आपकी सारी जन्म कहानी उनको दिखाई पड़ती थी, आपका स्वभाव क्या है, संस्कार क्या है, आपने कितना पाप किया कितना पुण्य किया है, टोटल जन्म पत्री उनको दिखाई पड़ते थे। इसके कारण भी उनको संजय नाम है। और यहां तक नहीं, जो भी यज्ञ में शरीर छोड़ा ना बड़ों ने, उन सब का कब शरीर छोड़ने वाले वो सब पता था उनको, पता पड़ता था पहले। फॉर एग्जाम्पल साकर बाबा जब 18 जनवरी शरीर छोड़ा ना, अव्यक्त हुए, तब जनवरी के महीने में जगदीश भाई यहीं थे मधुबन में। बाबा को पता था, इसको पता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको दिल्ली भेज दिया। तो वो बोला नहीं बाबा मैं यहीं रहूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, चले जाओ यहां से, जबरदस्ती से उनको भेज दिया। जब बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद रात 12 बजे के बाद जब दादी जी का फोन आया दिल्ली, तो दिल्ली कमला नगर में गुलजारवादी जगदीश भाई और दीदी वगैरह होंगे, वहां दो ही कमरे थे, एक कमरे में दादियां रहती थी, दूसरे कमरे में जगदीश भाई रहते थे। तो हर बार जब भी फोन आए जगदीश भाई उठाए करते थे। जिस दिन दादी जी ने फोन किया तो जगदीश भाई उठाए नहीं। क्यों नहीं उठाया?
उनको पता था,
उनको पता था। तो गुलजार दादी ने कहा जगदीश भाई फोन उठाओ, तो भाई साहब ने कहा नहीं दादी आज मैं नहीं उठाऊंगा, आपको उठाना पड़ेगा। जब दादी ने उठाया तो मैसेज मिला, तब उन्होंने बोला मुझे पता था इसलिए आपको उठाने लेके। ये पहली बात है। दूसरा, जब विश्व किशोर भाव, जानते होंगे ना बाबा के भतीजा, तो उन्होंने भी ऑपरेशन के लिए बॉम्बे गई, तब भी इनको पता था ये शरीर छोड़ने वाले। बड़ी दीदी मनमोहिनी, जब वो भी बॉम्बे गए ऑपरेशन के लिए, तब उन्होंने दादी जी को बोला था दादी ये तो जाएंगे वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, अब एक बाप दादा न भगवान का दोष है और न भगवती का दोष है, भगवती डॉक्टर का नाम था। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स वो दादी को बताया करते थे। फिर दादी ने बोला देखो जगदीश भाई अभी इसको बंद करो, किसी को नहीं सुनाना कौन कब शरीर, वो सिर्फ कब शरीर छोड़ते नहीं कैसे भी शरीर छोड़ते ये भी उनको पता पड़ता था। और जब भी वो पहले तो आप देखते हैं ना, कोई भी कुछ घटना होने वाली होती हो, कोई डेंजर कोई खतरा कुछ होने वाला, तो उनको पहले से आभास हुआ करता था, बाबा ने उनको टच करता था, इसलिए उनको संजय नाम से दिव्य दृष्टि वाला बाबा ने नाम दिया। अब दूसरा है गणेश। गणेश किसको बोलते हैं, गणेश के लक्षण
उसके तो बहुत सारे।
सबसे पहला कौन सा, विघ्न विनाशक बोलते हैं, है ना, विघ्न विनाश, विघ्नों को दूर करने वाला। अभी तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ब्राह्मणों की संख्या बहुत है, लाखों करोड़ों में है, उस समय गिनती में थी, विरोध बहुत होता था, हर जगह प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे, गालियां देते थे या तकलीफ देते थे, ताला लगाना, पानी बंद करना, लाइट बंद करना, ये सारा किया करते थे हमने दादियों को। तो ऐसे समय पर जहां समस्याएं आते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, वहां बाबा इनको भेजा करते थे। ये जाके कोई भी विघ्न हो, कोई भी समस्या हो, सरकार के साथ मिलकर ये सारे विघ्नों को दूर करते थे, इसलिए उनको विघ्न विनाशक है। और गणेश का दूसरा नाम भी है सिद्धि विनायक, आपको पता होगा ना। गणेश के दो साथी है, कौन कौन, सिद्धि रिद्धि और सिद्धि,
वो तो
है ना, रिद्धि और सिद्धि, यथा अथवा विधि और सिद्धि, शुभम और लाभ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, शुभ लाभ।
ऐसे उनके उनके जो दो पुत्र हैं वो शुभ और लाभ अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी, और उनकी जो दो पत्नियां हैं वो रिद्धि और सिद्धि।
रिद्धि और सिद्धि। अब रिद्धि और सिद्धि का अर्थ क्या है जानते हैं? रिद्धि माने विधि, जब विधि से हम काम करते हैं तब
सिद्धि
मिलती है। इसी प्रकार भाई सब जो भी सेवा करे, जो भी कार्य करे, विधिवत नियम के अनुसार श्रीमत के अंदर रहकर श्रीमत के आधार पर सेवा करते थे, और हर सेवा पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। कितने भी बड़े बड़े विघ्न आए हो, असंभव काम भी उन्होंने संभव किया, क्योंकि वो बोलते थे ये सेवा किसने दिया, ये किसका सेवा है, भगवान का सेवा है। दिया किसने? भगवान ने दिया। और ये भी निश्चय, बाबा कहते हैं ये तो नया काम थोड़ी आप कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं क्या? कल्प किया है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप तो दिल्ली वाले हैं तो आपको पता होगा 1973 या 74 में जब लाल किले में मेला हुआ था, जब रशिया का राष्ट्रपति आने वाला था, इंदिरा गांधी ने सब कुछ वो मैदान में जब किया हुआ था मेला के लिए, उन्होंने चेंज कर दिया, नहीं आप खाली करो, लेकिन रात रात योग करके उनको विजय प्राप्त किया, विघ्न को दूर किया, सफल किया, उसी जगह पर उन्होंने मेला किया। उसी प्रकार जब ये शायद तालकटोरा शिले में कहीं था, वो राष्ट्रपति वो आने वाले थे शंकर दयाल शर्मा, उसमें एक स्टेज पर एक छोटी सी जो टाइल्स है ना निकली हुई थी, उसके कारण वो सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। सब कुछ तैयार किया, उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं आएंगे, जगह बदली करो, आज प्रोग्राम है, कैसे हो सकता है। तो फिर भी उन्होंने सब भाइयों से योग करा के भट्टी करके पूरा करके सफल किया। इस तरह उनको इस कारण से भी सिद्धि विनायक कह सकते हैं। गणेश जी को गौरी पुत्र कहते हैं, है ना? गौरी पुत्र है ना? गौरी कौन है? कौन बताएंगे गौरी कौन है?
पार्वती बोल रहे हैं।
पार्वती कौन है? बाबा ने बोला तुम सब बच्चे गौरी हो पार्वती हो, लेकिन हम सब में सबसे पहला कौन है?
ब्रह्मा बाप।
ब्रह्मा बाप शिव बाबा, गौरी ब्रह्मा बाबा। गौरी का सबसे प्यारा पुत्र था गणेश। ऐसे ही जब साकार बाबा थे तब घड़ी घड़ी हर बात पर कोई भी नया संकल्प आया, नई युक्ति आई, बाबा ने टच किया, तब किसको याद किया करते थे? जगदीश भाई साहब। तो जगदीश भाई साहब खुद ही एक बार क्लास में सुना रहे थे, कुछ 1950-60 इस साल में ऐसी एक भी मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने जगदीश भाई का नाम लिया हो। इतना बाबा का बहुत नजदीक और प्यारे थे। और उसी प्रकार मम्मा के भी बहुत लाडले थे। मम्मा भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनसे, कभी भी उनको ये ठीक नहीं वो ठीक है। जगदीश भाई भी जो भी लिखते थे फर्स्ट मम्मा को दिखाते थे, ऐसे कहते हैं। और एक हो गौरी पुत्र, और एक उसको कहते महिमा है विद्यापति। विद्यापति माना विद्या का अधिपति, इसलिए उन्होंने इतने किताब लिखी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा हुआ हो उन्होंने लिखा नहीं हो। वो बीए बीटी पास किए थे, आर्ट्स ग्रेजुएट, हिस्ट्री पढ़े हुए थे, फिर भी उन्होंने लॉ के बारे में लिखा, साइंस के बारे में लिखा, मेडिकल साइंस के बारे में लिखा, लॉजिक के बारे में लिखा, सोशियोलॉजी के बारे में लिखा, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा, रिलीजियस फील्ड के लिखा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। खेल के बारे में लिखा, रूरल विंग के बारे में लिखा, सोशल विंग के बारे में लिखा, हर विंग का हर क्षेत्र के बारे में उन्होंने लिखा। एक बार आप शायद पता होगा, एक ये जहां जूरिश कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तब कृष्ण अय्यर जो सुप्रीम कोर्ट जज थे वो पहली बार जब आए थे तो इन्होंने एक ये लिखा था, कॉन्फ्रेंस के लिए लिखते हैं ना कुछ अपना लेक्चर प्रिंट करके दिया था, तो उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट लिख के दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट जज भी हैरान रह गए, जो बातें हम नहीं समझते जानते ये सारे बात इनको कैसे पता है। उसी प्रकार मेडिकल कई कई डॉक्टर्स बोलते हैं, साइंटिस्ट भी उन्होंने कई वो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस भाग लिया था, जब उन्होंने भाषण किया तो लोग वंडर खाते, जो बातें हम नहीं जानते ये कैसे जानते, प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें ये भी वो बताया करते थे। तो फिर गणेश के एक लास्ट एक मैं बता देता हूं। वेदों का रचयिता कौन है?
व्यास।
वेद किसने लिखा? सोच समझ के बोलना। वेदों का रचयिता कौन है? वेदों का जो लिखा, वेदों को लिपिबद्ध किया किसने किया?
गणेश ने।
तो वेद व्यास बोलते हैं। चारों वेदों का रचयिता जो है व्यास महर्षि है। वो लेखक कैसे हो गया? कहने के लिए कहते वेद व्यास महर्षि ने लिखा, लेकिन वेद का जो ज्ञान है वो व्यास के पास था। तो वेदों को जो लिखा, लिपिबद्ध किया, वो गणेश ने लिखा। मतलब व्यास महर्षि बोलते गए, गणेश लिखते गए। तो एक बार एक आर्टिकल में जगदीश भाई बोल रहे थे, बाबा कहते हैं मैं गणेश हूं, लेकिन वास्तव में गणेश बाबा है। क्योंकि सबसे पहले ज्ञान किसने लिया? शिव बाबा से। इसलिए वो गणेश है, वो अपने में पेट भर के ज्ञान भरा, उसके बाद हम लोगों को दिया। इसलिए फर्स्ट गणपति कौन है? ब्रह्मा बाबा। सेकंड गणपति जगदीश भाई। थर्ड गणपति, फोर्थ गणपति, नंबर वार हम सब है ना। गणेश माना गुणों का ईश, गणेश माना ज्ञान मूर्ति, गणेश माना शक्तिशाली, गणेश माना योग युक्त, गणेश माना रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया होगा, गणेश माना सिद्धि प्राप्त करने वाला, गणेश माना विधि बताने वाला, ये सारे कौन है? हम ब्रह्मावत्स। तो इस प्रकार गणेश जो है सारे वेदों का लिपिबद्ध किया। और चौथा है
दधीचि
व्यास। व्यास के बारे में अब गणेश के मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि हमारे शैलेंद्र भाई बहुत प्रश्न लेके बैठे हुए हैं आपकी तरफ से, 10 प्रश्न लेके बैठे हुए हैं। तो व्यास, व्यास माना कौन है? शिक्षक, टीचर। जगदीश भाई साहब व्यास भी है, क्योंकि वेदों को किसने लिखा? गणेश ने लिखा। गणेश ने लिखा माना लेखक के रूप में भी वो व्यास हो गए, और उसको ज्ञान को व्यक्त करने में भी ये व्यास हो गए। इतने सारे उन्होंने क्या किया? किताब लिखा। एक बार जगदीश भाई साहब साकर बाबा से मिल रहे थे, तब बाबा ने बोला, बच्चे तुम ही सारे वेदों को लिख के लोगों को भटका दिया है, भक्ति मार्ग में सबको गुमराह कर दिया, भगवान परमात्मा से दूर कर दिया, इसलिए तुम ही उसको ठीक करो। फिर उसके बाद उन्होंने महाभारत किताब के बारे में स्टडी करके पुणे में 2-3 महीने रहकर कई जगह पर रिसर्च करके वो महाभारत का सच्चा सार, गीता का, महाभारत और गीता का सच्चा सार और स्वरूप एक किताब बनाए। इस प्रकार व्यास, व्यास में भी प्रकार है। एक है व्यास, व्यास में कई व्यास है बताते हो, शायद आप तो किसी ने भी अगर महाभारत किताब पढ़ी हो तो उसमें है व्यास कृष्ण कितने तरह के, कृष्ण कितने तरह के, तो व्यास, उसके साथ साथ व्यास महर्षि, सॉरी व्यास देव। कोई ओडिशा वाले होंगे यहाँ पे, या ओडिशा भुवनेश्वर गए होंगे, भुवनेश्वर में एक मंदिर है व्यासेश्वर मंदिर, वहां क्या है? शिव की मूर्ति है, शिवलिंग है। व्यासेश्वर शिव बाबा है, व्यास ब्रह्मा बाबा है, और फिर नेक्स्ट व्यास जगदीश भाई है, और नेक्स्ट व्यास जो भी लेखक है बाबा के, नंबर वार लेखक है या टीचर है, वो सारे व्यास है। इसलिए इस प्रकार आपने शायद कहते हैं चार वेदों को लिखा, तो मुझे आज याद आ रहा था, हंस भी आ रहे थे, जब वो जगदीश भाई जाने के बाद उनके जो क्लासेस होते हैं ना, वो सारा इकट्ठा करके एक किताब बनाने के लिए मैंने सोचा, ज्ञान सुधा नाम से, आपने देखा होगा, चार वो कितने पार्ट है? पांचवा बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैटर ही नहीं मिला, चार ही रह गए। तो इसलिए मुझे हंसी आई आज। देखो, कहते हैं व्यास ने चार वेद लिखा, तो ये तो ज्ञान सुधा भी चार ही बन गए। तो हो सकता है यही वेद हो हम ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छी किताब है दोनों। अगर किसी ने पढ़ा नहीं हो वो चारों किताब पढ़ो, हमारा पुरुषार्थ कैसे करे, कैसे बाबा से प्यार बढ़ाए रखे, ये सारे बातें। और लास्ट वन ददीची। ददीची तो आप कहानी सुनते हैं ना, इतनी हड्डी हड्डी सेवा की, आके जब राक्षसों ने देवलोक पर हमला किया तब इंद्र के लिए उन्होंने पूरे अपने शरीर को एक खड्ग बनाकर दे दिया, उससे उनकी विजय हुई। इस प्रकार बाबा ब्रह्मा बाबा का भी ये टाइटल है, और शिव बाबा ने जगदीश भाई को भी लास्ट लास्ट में दिया, ददी चिरुचि जैसे हड्डी हड्डी अंत तक उन्होंने सेवा किया। वो कैसे सेवा किया वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है। शरीर छोड़ने के एक दिन पहले तक उन्होंने सेवा किया, एक के बारे में आइडिया देते रहे।
भाई साहब एक सीक्रेट क्वेश्चन, आपने बोला भाई साहब ने कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, चाहे वो फिलोसफी हो लॉ हो, ये सारा भाई साहब में आता कैसे था? आप उनके साथ रहे, क्योंकि व्यक्ति इतना पढ़ता है लेकिन कई बार इतने विषय पे नहीं लिख सकता है, या तो परमात्मा गिफ्ट होती है, कई बार व्यक्ति में कुछ उनकी ऐसी विशेषता होती है जो इतना सारा, तो आप भाई साहब के साथ रहे, इतना सारा उनमें ज्ञान कैसे आ जाता था?
आपको इतना वंडर लगता होगा, मुझे तो लगा उस दिन वो कोई किताब लिख रहे थे, मैं गया था, मुझे बुलाया था उन्होंने इसमें सुदर्शन भवन में, तो बुलाया तो फिर मैं तो बैठा रहा, तो लिख रहे तो फिर बात नहीं कर बैठ रहा, उतने में फोन आया, 5-10 मिनट उन्होंने बात किया, बात करके फिर लिखना शुरू कर दिया, कंटिन्यूस लिखते रहे, फिर लिख के मेरे को देना था उनको दे दिया। देखो हम लोग कोई लिखने बैठते हैं तो कोई बीच में कट हो जाता है तो फिर हमें याद करना पड़ता है कहाँ छोड़ा था क्या छोड़ा था, लेकिन उनमें जो लिखना है वो 100% क्लियर रहता है बुद्धि में, क्या लिखना है कितना लिखना है, जहां छोड़ा है वहीं से स्टार्ट किया करते थे। उनमें बुद्धि में जो ज्ञान का जो धारा है ना, जैसे कहते हैं ना शिवलिंग के ऊपर जो टपक है, एक 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 एक, एक बूंद टपकते रहते हैं कंटिन्यूअस, उसी प्रकार उनमें दया अगर ज्ञान सुनाना शुरू किया तो चलता रहे एक रस एक रस। इसलिए एक बार वो उन्होंने यहाँ कॉन्फ्रेंस ज्ञानसर में कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, उस समय उन्होंने बोला कल्प वृक्ष के बारे में अगर मैं भाषण करूं एक महीने तक उसी एक टॉपिक पर मैं बोल सकता हूं। हमें एक टॉपिक एक घंटा अगर क्लास करवाने के बोले तो उसमें सारे के सारे पूरा ज्ञान आया रहता है टोटल, बाबा ने जितना सुना है उतना इतना इतना थोरली। तो इसके लिए क्या कारण है, आप क्या सोचते हैं क्या कारण होगा?
शिव बाबा का वरदान।
एक तो चलो शिव बाबा का
वरदान
हाँ वो तो है ही। सबसे पहले ये है बुद्धि का समर्पण, वो अपनी बुद्धि को जब से वो ज्ञान में आए बाबा के बनने के बाद अपनी बुद्धि को कोई भी बाबा के यज्ञ और बाबा की सेवा के सिवा और किसी में उन्होंने लगाया नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक बार जब वो बीएड कॉलेज प्रिंसिपल थे ना, तब उनको एक वहां वार्षिक ये क्या कहते सोविनर निकाल रहे थे, तब वहां के जो डायरेक्टर होता है ना उन्होंने बोला भाई जगदीश जी आप इसके लिए एक संपादकीय लिखो, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं तन मन धन से भगवान के लिए अर्पित हुआ हूं, उस दिन से मेरा मन हो मेरी बुद्धि हो मेरा लेखनी हो किसी लौकिक काम के लिए यूज नहीं होगा। तो मतलब जब से वो बाबा के बने अपने बुद्धि सहित समर्पित, बाबा के श्रीमत जो कहती है बाबा जो कहते हैं उसी, और बाबा के हर बात पर उनको 100% निश्चय और तुरंत करना। तो ये कहानी आपको पता होगा वो लेखक कैसे बने, उनका जो क्लासमेट थे आप शांतिवन के जो प्रिंटिंग प्रेस के आतम भाई को जानते होंगे दिल्ली वाले, तो आतम भाई के बड़े भाई थे लक्ष्मण भाई, कुरुक्षेत्र में रहा करते थे, वो दोनों क्लासमेट थे वहां इसमें मुल्तान में। तब वो कहा करते थे, ये स्कूल में उतना इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं थे, थे मिडिल क्लास, डल भी नहीं है और बहुत ये भी नहीं है, होशियार भी नहीं है, लेकिन बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति थे। कोई भी काम करे उसमें फर्म और सत्य धर्म और न्याय के लिए उस समय से वो लोग फाइट करते थे, बता रहे थे। तो वही गुण उनको ज्ञान में काम आए। तो मेन मुख्य बातें है, मैं समझता हूं उनमें सच्चाई बहुत थी, सत्य, कोई भी चीज हो सच्चाई के, सत्य के प्रति और बाबा के प्रति, बड़ों के प्रति, ज्ञान के प्रति, बहनों के प्रति बेहद प्यार था और क्या कहते हैं सम्मान भी था। और वो ऐसा ऑर्डिनरी व्यक्ति भी नहीं थे, वो लौकिक में ऐसा नहीं वो गरीब परिवार से आए थे, नहीं, उनके जो खानदान वाले थे या मुल्तान के जो राजा थे, रणजीत सिंह कुछ नाम था उनका मुल्तान के, वो रणजीत सिंह के दरबार में इनके दादा परदादा दीवान थे और इनके पिताजी वहां हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से पहले वहां रहते थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड। जब पार्टीशन हुआ, जब वो भारत आए तो हरियाणा में इनके पिताजी को एक नौकरी मिली, कुछ जमीन मिली, ऐसे इतने होते हुए भी वो इतना सादा जीवन उन्होंने बिताया, बात सच्चा योगी जीवन। योग का सबसे पहला जो है लक्षण या नियम है सादा जीवन बिताना। आप लोगों ने देखा होगा ब्राह्मणों में, ब्राह्मण जीवन में जो जितना सादा जीवन व्यतीत करता है, जितना गुप्त जीवन व्यतीत करता है, जितना अर्पण जीवन व्यतीत करता है, वही जीवन में सफलता पाता है। सफलता माना बाबा का जो वर्षा है उसका अधिकारी बनता है। तो बाबा का वर्षा क्या है आप बताएंगे? कोई बाबा का वर्षा क्या है हाथ उठाइए, कौन बताएंगे? ज्ञान और तीन, तीन वर्षा है बाबा का। अगर वो जिनों को मिलता है वही भविष्य में बादशाह बनता है, राजा बनता है। वो तीन है, पवित्रता, सुख, शांति, ये बाबा के वरदान है। संगम के जो संगम है ई ए प्रॉपर्टी जो अपनाता है वही भविष्य में देवता बनता है। ये तीनों जो है उनकी पवित्रता के लेवल, उनकी बुद्धि के जो हाईएस्ट जो कैपेसिटी जिसको बोलते हैं उसके लेवल, और समर्पण भाव जो है, इसके कारण मैं समझता हूं बाबा ने उनको वरदान दिया, सिद्धि विनायक है। जो भी संकल्प करो वो सिद्ध होगा, वो उन्होंने जो भी संकल्प किया सब सिद्ध हुए।
भाई साहब की जब लेखन की बात हो रही है तो एक बार मैंने चिमन चाचा से पूछा, चिमन भाई पांडवन में रहते हैं, वो जैसे ब्राह्मणी थे जगदीश भाई जी के, सारा मधुवन में जब भी भाई साहब आते थे तो उनको चाय पानी सब कुछ उनका देखते थे। तो एक बार भाई साहब मैंने उनसे ऐसे पूछा कि भाई साहब इतना आर्टिकल लिखते हैं उन कैसे होता है उनका, तो भोले हैं उन्होंने भोलेपन में बोल दिया, अरे उनको कुछ नहीं, मैं 3 बजे चाय देने जाता हूँ और जब योग के बाद 4:45 बजे उनके कपड़े लेने जाता हूँ तब तक वो मेरे को आर्टिकल दे देते हैं। इतना एक आर्टिकल लिखने में कुछ भी नहीं, मतलब वो गए और जब वापस आए तो एक आर्टिकल चिमन चाचा के हाथ में होता था कि ये उनको दे दो इस तरीके से। और सेम ऐसे ही एक बार मैं पूना गया था भाई साहब, तो पूना में एक भाई थे जो भाई साहब के साथ थे, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब खास एक हफ्ते के लिए वहां पे इसलिए आए क्योंकि पूना में कोई लाइब्रेरी थी और वहां पे वो बुक मिलती थी जो भाई साहब को पढ़ना था, तो उस बुक के कुछ बहुत सारे वर्जन थे, वो एक बड़ा सा बैग लेके गए, वो सारी बुक्स को लाइब्रेरी से इशू किया और भाई साहब 8 दिन में रहे, 8 दिन पूना में रहे, उन्होंने वो सारी बुक्स को गो थ्रू हुए, जो नोट बनाना था वो नोट बनाया और उस कुमार वो सारे सेंटर वाले वंडर खा गए कि 8 दिन में जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है इतनी सारी बुक्स, भाई साहब ने उसके नोट भी बनाए और वो सारा। तो जो बुद्धि की बात बाबा बोलते ना क्लियर बुद्धि, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भाई साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे वही उनकी दिनचर्या, यू नो भाई साहब को आप जैसे बोल रहे थे बहुत लाइक कट्टर, श्रीमंत के लिए एकदम कट्टर, तो उनकी दिनचर्या कैसे होती थी?
जब हम यहाँ मधुबन में देखते थे, मैं तो दिल्ली में तो रहा नहीं उनके साथ, लेकिन मधुबन में हमने देखा उनका जो एक खुशी की बात भी मुझे, मैं सुनाना चाहता आप लोगों को। तो भाई साहब के जो उनके सेवा में सहयोग होने के कारण उनके बारे में एक किताब बनाने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आप शायद देखे होंगे, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक नाम से एक किताब है।
एक्चुअली ये क्वेश्चन भी था भाई साहब, आपने ये बुक, क्योंकि वो भाई साहब चले गए उसके बाद शायद ये बुक, तो बुक का टाइटल ही ऐसा कि व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, तो उसके पीछे भी वैसे ये पूछना था, ये सारी कंपाइल करने के पीछे आपका थॉट क्या है?
बहुत वंडरफुल, इनकी एक एक किताब जैसे जैसे बनाता था उसका हर किताब का अनुभव अलग अलग है। ये भाई साहब जाने के बाद कितनी किताबें, मुझे आश्चर्य लगता है मेरे वश की बात नहीं। देखो आपको पता होगा मैं साउथ इंडियन हूँ, अहिंदी भाषा वाला, लेकिन आश्चर्य ये है कि मेरे से हिंदी किताब बनवाई बाबा ने। अच्छा उनको भी जगदीश भाई, उन्होंने कैसे परखा ये बना सकता है? तो मैं वो जाने के बाद मैं जहां जहां जाता था लोग बोलते थे मैं जगदीश भाई के बारे में सुनाइए, तो मैं तो अभी क्या करूं, सुनाता था जहां भी देखे। टीचर्स, आखिर एक ग्रुप आया था मेरे पास यहाँ ऑफिस, मेरे पहले ज्ञानसरोवर में ऑफिस था, यहीं रहा करता था। ये बहनों का एक ग्रुप आया, आके उन्होंने बोला भाई जी सबके किताब बनी है, जगदीश भाई की किताब बननी चाहिए। मैं 4-5 साल से टालता रहा क्योंकि जगदीश भाई खुद नहीं चाहते थे अपनी किताब बनाने की, क्योंकि मधुबन में जब क्लास होती थी ना बहनों, रात को बहनें मिलने जाती थी 8-9 बजे मधुबन की बहनें, तो बहनों ने बोला भाई साहब आपके बारे में एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो उन्होंने बोला बहने ये संगम युग है, सिर्फ संगम युग में ही भगवान का सच्चा परिचय मिलता है और किसी युग में नहीं है, इसलिए इस युग में हम लोगों को शिव बाबा को ही प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रहना चाहिए, लिखना भी शिव बाबा के बारे में, शिव बाबा के कर्तव्य के बारे में, ज्ञान के बारे में लिखा है। अगर मैं अपने बारे में लिखूं फिर वही हो गया ना कलयुग द्वापर, अगर मैं अपने बारे में लिखूं एक तो पाप बनता है, दूसरा लोग भगवान को छोड़ेंगे फिर द्वापर युग से वेद के पीछे, पुराण शास्त्र जैसा वो व्यास महर्षि के पीछे पड़ जाता है ना, ऐसे फिर वो पाप मेरे से हो जाता, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो ये बात मुझे ख्याल में था, इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगाया था, लेकिन लोगों की बहुत डिमांड हो गया, अपने भाई बहन बहुत लोगों ने कहा बनाना चाहिए। तो फिर मैंने एक दिन बाबा कमरे में जाकर बैठ के बाबा से बोला बाबा क्या करूं ऐसे ऐसे प्रचार, तो बाबा ने मुझे छुट्टी दे दी। और उसके बाद जैसे 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 उस समय अकाउंट्स चलता था मधुबन में, वो लास्ट ग्रुप था, देखिए ड्रामा अनुसार सब जो भाई बहन है दिल्ली के, यूपी के, पंजाब के जो बहने हैं सीनियर बहने भाई है, वो लोग अकाउंट्स में आया करते थे, तो उसी समय सबसे मैंने इंटरव्यू लिया उनके बारे में, उसके अति नजदीक जो रहे थे इंटरव्यू लेके फिर कलेक्ट किया। तो फोटो के लिए क्या करें, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो किसी के पास फोटो नहीं है, सब कोलैप्स कर दिया था क्योंकि शक्तिनगर का नया मकान बना दिया था, वो सारे फोटोज वीडियो सब कहते डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर किसी एक भाई के पास मिला, फोटो मिले, आखिर वो किताब बनी। वो किताब इतनी पॉपुलर हो गई यज्ञ में, कहते 4-5 बार छप गई, बता रहे आज तक 2 साल पहले वो छपी थी। तो इस प्रकार वो किताब बहुत अच्छी, अगर कोई जगदीश भाई के बारे में जानना चाहते हैं तो किताब जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है। अच्छा आपने क्या
दिनचर्या?
दिनचर्या, वो दिनचर्या वो रोज 2 बजे उठा करते थे
भाई साहब। उनके बारे में ऐसे भी है कि उठने के बाद वो नहा के बाबा के कमरे में जाते थे।
हाँ, जो 2 बजे उठ के, आमतौर पर तो 2 बार नहाते थे, उठते ये नहाना, फिर बाद में 5:30 बजे लगभग, जब 2 बजे उठते थे योग करने बैठ, या आमतौर पर योग करने ही बैठते थे, लेकिन योग करते करते बाबा उसको योग करने नहीं देता बेटा। फिर उनका वो होता है ना ब्लैटिंग पेपर, वो जैसा वो लकड़ी का जो होता है
पैड,
तख्ता जो जिसको बोलते हैं, तख्ता,
तख्ता,
उसको लेके वो हमेशा बगल में 4-5 पेन कागज वो सारे बगल में जो इस पर टिपाई पर रहते थे तो लिखना शुरू करते थे। ज्यादातर उन्हें योग कम किया है अमृत वाले, लिखना ज्यादा किया हुआ था। तो कहते बाबा उनके जो कमरा था ना, कमरे में जब ऐसा बेड था, उनका कमरा तो शायद देखा है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो उनका एक ही कमरा, कमरा भी है, बेडरूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, और लिखने के लिए टेबल, वही पलंग भी टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ वही है। तो उनके पलंग के सामने दीवार है, दीवार के बाबा का फोटो, बस बैठे रहे, बाबा को देखते रहे और लिखते रहे। तो एक बार क्या हुआ था, मैं दिल्ली में जब ज्ञानामृत बनाता था सारे हिंदी का टाइपिंग करके, पेज सेटिंग करके, फाइनल प्रिंटिंग के लिए तैयार करना था, तो आपको पता है ज्ञानामृत का डेट फिक्स रहती है, इतना 1 तारीख पोस्ट करना, किसी हालत में उसको पोस्ट करना, 30 तारीख है, बस अभी ज्ञानामृत छपने वाला है। तो फोन आया भाई साहब का, आतम भाई को, भाई ये मैगजीन अभी नहीं छपना है, मैं दूसरा मैटर देता हूं। तो दूसरा मैटर, तो आतम भाई आके मेरे को बोला, भाई वो मैगजीन कैंसल, दूसरा मैटर देते हैं, वो दोबारा टाइप करना। मैंने कहा भाई साहब टाइम कहाँ है, 1 दिन तो बाकी है, 30 पेज टाइप करके, प्रूफ करके, पेज बना के कैसे कर सकते हैं। तो मैं नहीं करने वाला, मैंने बोल दिया मैं नहीं करूंगा, ये तो होने वाला भी नहीं है, पूरे रात बैठेंगे तो भी होने वाला नहीं है। तो फिर उन्होंने जगदीश भाई को बोला, भाई साहब वो मना कर रहा है तो मुझे बात कराओ। तो उन्होंने बोला, महेश भाई ये टाइप करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब आप जानते इतने 30 दिन चाहिए, 30 हम ये पूरा महीना टाइप करके वो एक मैगजीन तैयार करते हैं, आप 1 दिन में कहते मैगजीन बदल दो। अरे भाई मैं क्या करूं, वो बैठा हुआ है ना ऊपर, वो बोलता है इस बार ये मैटर नहीं दूसरा मैटर छापो, जो मैं जो बोल रहा हूं वो छापो। तभी को अब मैं उसको क्या बोलूं बता, आप तो मेरे को जवाब दे दिया, मैं उसको कैसे जवाब दूं। तो बाबा का नाम ले तो हम भी क्या करें, ठीक है भाई साहब। दिन रात बैठ के टाइप करके फाइनल करे, तो वो तो मैटर तो काम आएगा ना, वेस्ट नहीं होगा, इस महीने छापने पर अगले महीने छाप देना, ठीक है ऐसे। इस प्रकार बाबा उनको ऐसे टचिंग देते थे कि वो कहते मुझे छोड़ता नहीं था, सोने नहीं देता था, बैठने देते थे, ऐसे कराता था। इस प्रकार उनको 2 बजे उठना, 2 या 2:30 बजे के अंदर उठना, और एक अब योग करना नहीं तो लिखना। और उसके बाद वो 5 बजे उनको एक बहन कोई चाय लेके आती है, चाय पीना, फिर वो बहन मुरली सुनाती थी उनको कमरे में। कौन, कोई बड़ी बहन नहीं है, जो जूनियर होते हैं सबसे नई बहने होते जो ट्रायल पर आते रहते, वो बहनों उनको मुरली सुनाते थे। तो मुरली क्यों सुनाते थे, उनको मुरली सुनना भी हो गया, उनको ट्रेनिंग भी देना हो गया, उन बहनों को ट्रेनिंग कैसे मुरली सुनानी है, उनको प्रश्न, उनसे प्रश्न पूछते थे, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है। बहने डरते थे उनके पास जाने, कई बहने तो मना कर दिया हम नहीं जाएंगे, फिर उनको बुला के प्यार से, नहीं मैं किस लिए प्रश्न पूछता हूं आपको तंग करने के लिए, नहीं कल कोई जिज्ञासु आपसे प्रश्न पूछेंगे क्या उत्तर देंगे, इसलिए मैं आपको बाबा का ज्ञान कैसे सुनाए ये सिखाने के लिए। इस तरह उनका हर कर्म में सेवा समाये हुए थे। फिर उसके बाद वो स्नान करते थे, स्नान करने के बाद उनको 1 ग्लास दूध और बादाम भिगोए, बादाम देते थे, और वो अमृत वेले उनका टर्न भी होता था योग कराना, तब योग करा के उन्होंने कुछ क्लास भी कराते थे। तो फिर उसके बाद 7-7:30 बजे उनका नाश्ता होता था, सिंपल, वो तो उनका कोई ये नहीं, नमक मिर्ची कुछ नहीं होता था। फिर 11 बजे वो रेस्ट करते थे भोजन करके, फिर सब बहने जब 1 बजे सोते थे, ये अकेले पूरे सेंटर संभालते थे, जाकर लिखना पढ़ना फोन करना जो भी है, फिर जब बहने उठते थे उसके बाद इनका अपना काम करना। फिर इस प्रकार रात 12-11:30 से पहले वो कभी नहीं सोते थे, बताते हैं इतने फोन वगैरह आते थे, लिखना पढ़ना होता था।
भाई सबके बारे में ऐसे भी बोलते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे बाहर की पत्रिकाओं में जो देना होता था, भाई साहब अपना नाम नहीं लिखते थे, दादियों का, बड़ी बहनों का ऐसा नाम लिख के दे देते थे।
आपको ये भी पता होगा, ज्ञानामृत नाम से पहले हमारा मैगजीन चलती थी 3 महीने में एक बार, उसको त्रिमूर्ति बोलते थे, त्रिमूर्ति नाम से मैगजीन शुरू हुई 1965 से शायद। तो तब तक बहुत सालों तक उन्होंने पूरा मैगजीन खुद ही लिखते थे, लेकिन अपना नाम नहीं लिखते थे, सिर्फ जो संपादकीय होता है ना उसमें, वो भी संजय लिखा करते थे, जगदीश ने संजय लिखा करते थे, बी के संजय। फिर बाकी आर्टिकल बहनों का नाम, जैसे गुलजार दादी है, प्रकाशमणि दादी है, मनोहर दादी है, रुक्मिणी दादी है, ऑलराउंडर दादी है, इन बहनों का, स्नेह बहनों का नाम, क्योंकि हर बात में बहनों को आगे रखने में उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आपने शायद साप्ताहिक कोर्स देखा होगा, साप्ताहिक पाठ्यक्रम हिंदी में, वो कैसा है देखा है किसने पढ़ा है साप्ताहिक पाठ्यक्रम? सीधा ज्ञान नहीं उन्होंने ये दिया है, कन्वर्सेशन के ऊपर, वो जिज्ञासु प्रश्न पूछता है, उत्तर कौन देती है?
ब्रह्मा कुमारी।
मतलब ब्रह्मा कुमारी कैसे, उन्होंने नाम कैसे बाला करते रहे बहनों का, यज्ञ का, परमात्मा का।
और भाई साहब का विशेष पुरुषार्थ, मतलब जैसे आप रहे, वो स्थिति की बात अगर करें, पुरुषार्थ की बात करें, तो उसके विषय में भाई साहब विशेष क्या पुरुषार्थ करते थे, याद के संबंध में या मतलब सेवा के संबंध में? तो जैसे हम जानते हैं लेखनी से, लेकिन बाबा से प्यार, जो अटूट प्यार होता है, उसके लिए उनका क्या विशेष पुरुषार्थ, ऐसा कुछ?
बाबा के प्यार,
बाबा से जो प्यार होता है ना, लाइक याद के लिए, या आजकल हम देखते हैं ना, हमें अपनी स्थिति बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, हम मौन रखेंगे, चिंतन करेंगे, बहुत पुरुषार्थ के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो भाई साहब का कोई ऐसा विशेष पुरुषार्थ था, माना जैसे स्थिति और उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करते थे भाई साहब?
मैंने उनको बहुत बार मिला है, अकेले में, करीब से भी देखा है। मैंने कभी ऐसा नहीं, विशेष पुरुषार्थ करते रहे हो, जैसे हम लोग सुबह अमृत उठ के बाबा कमरे में जाकर बैठते हैं, वहां बैठते हैं, यहां बैठते हैं, थल्ले पर बैठते हैं, या शाम को बैठ के योग संगठन में योग करते हैं, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। उनका पुरुषार्थ बहुत नेचुरल था, इतना नेचुरल कि आप अगर आपसे बात कर रहे हैं तो उसमें वो सिर्फ बात नहीं कर रहे, साथ साथ पुरुषार्थ भी चल रहा है। कैसे? वो आपसे, माना आप शरीरधारी से बात नहीं कर रहे, आत्मा से बात कर रहे। ये अनुभव बहुत लोगों को हुआ है, हर एक को, जब उनके कमरे में जाते थे ऐसा फीलिंग होता था कि हम शरीर से परे हो गए। उस अनुभव में कई लोगों ने लिखा है और मुझे भी अनुभव, कई लोगों का अनुभव है, मतलब वो हमेशा जो है ना ये आत्मिक स्मृति में ज्यादा रहा करते थे, और हर संकल्प और हर बात उनका जो है ना योग युक्त हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो कोई भी छोटे बच्चे भी उनके पास जाते थे ना, वो आप कह के बात करते थे, हम तो छोटे बच्चे, ए इधर आ जा, तू क्या कर रहा है, हम ऐसे बोलते ना, हम शरीर को देखते हैं, लेकिन वो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, माना मैं समझता हूँ वो आत्मा को देख के आत्मा से बात करते होंगे, क्योंकि अभी छोटा है, लेकिन इससे पहले हमारे से बड़े थे ना वो आत्मा, इस तरह मैं मानता हूं उनका पुरुषार्थ नेचुरल था।
और आपका वैसा विशेष कोई ऐसा अनुभव, मतलब जो आपको हमेशा जिंदगी में याद रहता है, आप उनके साथ जो रहे हैं, और उस अनुभव ने आपको, मतलब आज भी आप उस अनुभव को याद करते हो?
मैं तो भाई साहब से यही सीखा, ये दिखा है, भाई साहब के मन में बाबा के प्रति जो प्रगाढ़ प्यार और सम्मान था, वो मैं अपनाना प्रयत्न कर रहा हूँ, और बहनों के प्रति जो उनका स्नेह और सम्मान था, ये भी मैं करना कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा सफल नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि मैं बहुत कम ही संपर्क में आता हूँ भाई बहनों के, क्योंकि बाबा ने मुझे ऐसी सेवा दिया है अकेले में बैठ के सेवा करने का। मैं तो अपने आप को बहुत धन्य समझता, क्योंकि लोग मुरली पढ़ने के लिए, ज्ञान पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन बाबा ने मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ में दिया जो ज्ञान का भंडार था, तो उनको सेवा करते हुए मुझे ज्ञान में ही खेलना, और अगर हम कुछ पढ़ते हैं प्रूफ रीडिंग करते हो तो ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान योग, कर्म योग और सहज योग मुझे सहज पुरुषार्थी बना दिया। जैसे भाई साहब के मन में कोई, मैं समझता कोई अननेसेसरी बातें नहीं होती थी, उनका अगर बातें होती है तो सिर्फ यज्ञ के बारे में, बाबा के बारे में, बाबा के बच्चों के बारे में होते थे। उसी प्रकार मैं भी ज्यादातर यही कोशिश करता हूँ, मेरे को तो ज्ञान और सेवा का बिगर मैं बहुत किसी के बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। मैं किसी बात पर इंटरेस्ट नहीं लेता, बस मैं हूँ, मेरा पुरुषार्थ, मेरी सेवा, बस इतना, ये मेरा पुरुषार्थ।
तो भाई साहब आप हमें क्या संदेश देंगे, 5 मिनट है कर सकते, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप भाई साहब के साथ रहे, आप खुद इतनी अच्छे पुरुषार्थी हैं, तो जो आने वाला जो समय देखते हैं, हम फ्यूचर देखते हैं, तो हमें किस विशेष पुरुषार्थ पे भाई साहब ध्यान देना चाहिए? मतलब
उनका ध्यान तो सबसे पहले नियम पर था, लवफुल देन लवफुल, जैसे कहते हैं दादी जी को, पहले लवफुल लवफुल दोनों थे, लेकिन लवफुल एंड लवफुल दादी जी और जगदीश भाई, लवफुल एंड लवफुल, क्योंकि जो व्यक्ति नियम में नहीं रहता है ना, उसका परिवर्तन हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ब्रह्मा बाबा वो यज्ञ का मालिक थे ना, यज्ञ पितामह होते हुए भी बच्चों के लिए सब कुछ उन्होंने सुविधा दी, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। सुनते हैं ना कहानी में, जब बाबा का जो बाथरूम था, लैबोरेटरी, अंत तक उसके ऊपर छत नहीं थी, क्या थी, ये जो है ना, ये खजूर के जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसी का थे, सिर्फ उनका कमरे में छत थी, वहां बाथरूम में अंत तक, क्यों भाई, सब कुछ था, क्यों अपने लिए क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक योग नहीं लगता। योगी का सबसे पहला लक्षण है त्याग, और दूसरा है सादा जीवन, जितना हो सके उतना सादा, सब में, खाने में, पीने में, देखने में, पहनने में, रहने में, सादगी और त्याग, और तीसरा परमात्मा के प्रति अथाह प्यार। अगर ये तीन है तो उसका योगी जीवन है, ये तीनों नहीं है तो कुछ भी नहीं। आप जितने भी ज्ञान सुनाओ, कितना भी भाषण करो, कितना भी साल आप ब्राह्मण बन के रहो, आपका अनुभव नहीं होगा। अगर आप सच में ये संगम का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले सादा जीवन बिताओ, हर चीज में सादा जीवन, और त्याग करो जितना हो सके उतना स्थूल सुख वस्तुओं का त्याग करो, बड़े आनंद, और गुप्त रहो, अपने आप को प्रत्यक्ष करने का कोशिश मत करो, क्योंकि बाबा कहते हैं हर कर्म का फल मिलता है। जब कर्म का फल मिलता है तो हम क्यों अपना कर्म प्रत्यक्ष करें, जो मिलने वाला मिल ही रहा है ना, इसलिए जितना गुप्त रहेंगे उतना बाबा के पास रहेंगे, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। कोई भी किताब बनता है तो मुझे इतनी खुशी है, जब छपने के बाद बहुत खुशी होते, बस बाबा ने मुझे फल दे दिया, बस हो गई छुट्टी। उसके बाद जो पढ़ने वालों को तो आशीर्वाद मिल ही जाता है, वो क्यों मैं चिंता करूं, मुझे लोग पूछे इसके लिखा कौन है, बनाया कौन है, क्या है, कैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए गुप्त रहो, बाबा के पास रहो, सादा जीवन बीतो और त्यागी बनो।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। जब गणेश चतुर्थी की बात हो रही थी तो उसमें एक कहानी आती है ना कि गणेश और उसके भाई, तो जो उनके भाई थे उनका नाम गणेश का भाई कार्तिकेय, हाँ, उनके बीच में कंपटीशन हुआ कौन बड़ा कौन बड़ा ऐसे करके। तो कंपटीशन की शर्त ये थी कि जो सबसे पहले तीनों लोगों का चक्कर मार के आएगा वो सबसे बड़ा। तो कार्तिकेय साहब के पास तो उनका वाहन मोर था, लेकिन गणेश जी तो मोटे भी थे जाने में शायद, तो उन्होंने क्या किया, शिव और पार्वती का चक्कर काट लिया। तो ये सिम्बोलाइज किसका है, यू नो, ये आज सब कुछ बताते हैं, गणेश चतुर्थी की ये विशेषताएं बताते हैं, लेकिन जब मैं सोच रहा था सिंबोलाइज यही है कि जो यू नो परमात्मा को अपना संसार बना लेता है यू नो वही महान बनता है यू नो। तो आज भाई साहब से हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो हम भाई साहब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतने सारे अनुभव युक्त हमें खजाने
दिए। पहले आप सबको थैंक्स हमें बोलना चाहिए, क्योंकि आपके साथ देखो इतने सारे चैतन्य देवी देवता उन सबका दर्शन हुआ, और आपके साथ हमारा जो मन की बात अंदर की बात सुनाने का मौका दिया, इसलिए ये इसके आयोजकों को, सुमन बहन को, शैलेंद्र भाई को, दीदी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबा को थैंक यू। थैंक यू। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आपका जैसे रूटीन होता है ब्रेक के बाद पुनः आप।